أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت وكلها ضعفان فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير جماعة احمدیہ کا ایک مالی سال ختم ہوا اور جماعت اب اپنے دوسرے مالی سال میں داخل ہو چکی ہے یعنی 30 جون پر جس سال کا اختتام ہوا اس کے بعد 1 جولائی سے دوسرا مالی سال شروع ہو چکا ہے اس مالی سال کی تطبیق بعض دوسرے مالی سالوں کے ساتھ نہیں ہوتی مثلا تحریک جدید ہے اس کا مالی سال مختلف وقت میں شروع ہوتا ہے اور وقف جدید ہے اس کا مالی سال بھی ایک اور وقت میں شروع ہوتا ہے اسی طرح مختلف تحریکات ہیں جن کے مالی سال اس وقت سے شروع ہوتے ہیں جب وہ تحریک شروع کی گئی لیکن جماعت کے سامنے اعداد و شمار رکھنے کی خاطر ہم نے یہ طریق اختیار کیا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں جو بھی وصولی ہوئی ہے اس کو شمار کر لیا جائے تاکہ جواب جماعت کے سامنے گزشتہ مالی سال کی صورتحال واضح کی جا سکے یعنی تحریک جدید کا سال کا کسی وقت شروع ہو کسی وقت ختم ہو جو سال گزشتہ تحریک جدید کا سال تھا اس کی آمد کو ایک سال کی آمد کے طور پر ان اعداد و شمار میں شامل کر لیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت 266 ہے پہلے اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں راہ کا لفظ تو محاورتن بولا گیا ہے لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ ہے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور رضا نہیں بلکہ رضائیں چاہتے ہوئے کثرت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا پر نظر رکھتے ہوئے اس کی حرص میں کہ شاید اس قربانی سے خدا کی رضا حاصل ہو جائے چاہے اس قربانی سے خدا کی رضا حاصل ہو جائے تو رضا کی تمنا میں وہ جب بھی توفیق ملتی ہے वो माल खर्च करते चले जाते हैं। वह तस्बीत मिन अनफुसिहिम, और दूसरा मकसद अम्वाल के खर्च का अपने नफ्सों को मजबूत करना है। सवात कदम आपने सुना हुआ है, बार बार इस्तेमाल भी करते हैं, दुआओं में भी सवात कदम के सवात का लफ्ज आता है। सवात से मुराद है मजबूती के साथ कायम हो जाना, तो उनके नफ्स मजबूत हो जाते हैं और कायम हो जाते हैं, इस गरज से वो खर्च करते हैं। उनकी मिसाल ऐसी जन्नत की सी है, ऐसे बाग की सी है जो एक पहाड़ी पर हो, एक ऊंची जगह पर वाक़ हो। अस्वाबहा वाबिलुन, और उसे मूसलाधार बारिश पहुंचे। ओकोलाहा आतत ओकोलाहा फातत ओकोलाहा ज़ैफ़ैन, ऐसी सूरत में ऐसा बाग जो पहाड़ी पर वाक़ हो उसे मूसलाधार बारिश भी पहुंचे तो नुकसान नहीं होता बल्कि दुगना फल देता है। फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल, और अगर मूसलाधार बारिश नसीब ना हो तो शबनम ही उसके काम आ जाती है और उसी से वो बाग लहलहाने लगता है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला उस चीज को जो तुम करते हो बहुत जानता है। यहां मोमिनों के खर्च के लिए दो ही मकासद पेश फरमाए गए हैं, कोई तीसरा मकसद बयान नहीं हुआ। इसके अलावा बाज़ दूसरी आयात में जो इसी तसलसल में मिलती हैं ऐसे मकासद भी पेश फरमाए गए जो इन मकासद के अलावा हैं और उन सब को बातिल करार दिया गया। ऐसे मकासद जिनमें रिया, किसी को खर्च करने के बाद तकलीफ पहुंचाना, उस पर एहसान जमाना, और इसी तरह बाज़ दूसरी आयात में ये मकसद बयान हुआ है कि देकर ज्यादा लें, ये तमाम वो मकासद हैं जिनको बातिल मकासद के तौर पर कुरान करीम बयान फरमाता है। और इस तसलसल में जो आयात मिलती हैं उनमें ये फरमाया गया है कि उनकी मिसाल तो ऐसी है जैसे चट्टान, सख्त चट्टान पर थोड़ी सी मिट्टी वाली जगह पर कोई सब्जी उगाए, जब बारिश जोर से पड़े तो वो बहकर उसकी सारी मिट्टी उठ जाती है और सब्जी समेत उसको बहा के ले जाती है। बस आरजी और बेमानी है, इसको सबात के मुकाबले पर रखा है। सबात उस चीज को होता है जिसको कोई जलजला, कोई ठोकर, कोई तूफान अपनी जगह से उखाड़ न सके। तो जो खुदा की जो दो मकासिद बयान हुए हैं, इन मकासिद को पेश नजर रखकर जो लोग खर्च करते हैं उनको लाजमन सबात नसीब होता है, और सबात के नतीजे में उनकी खेती लहलहाती है और दोहरा फल लाती है और खिजां की हालत में भी फल देती है। ऐसी हालत में भी जब खुशकसाली हो उस वक्त भी ऐसी जगहों के लिए वो शबनम ही काम आ जाती है अगर बारिश ना हो, क्योंकि ऐसे बुलंद मुकामात जहां जिसके जैसा कि नक्शा खींचा गया है, यहां की मिट्टी अमूमन पानी को अपने अंदर जज्ब रखती है और मूसलाधार बारिश का पानी आनन फानन उड़ नहीं जाता जैसा कि पतली सतह की मिट्टी से उड़ जाया करता है। आज बारिश हुई, कल वो मिट्टी खुश्क दिखाई देती है जिसकी सतह पतली हो या रेतली हो, लेकिन मजबूत अच्छी मिट्टी हो और गाढ़ी मिट्टी हो और ऊंची जगह पर वाकया हो, उसको ना ज्यादा बारिश से नुकसान ना कम बारिश से नुकसान। पहाड़ की मिसाल एक लफ्ज रब्बा रखकर बीच में एक अजीमुशान मजमून बयान फरमा दिया गया। इसमें एक तो ये तस्वीर खींची गई है कि मोमिन की जो कुर्बानियां हैं वो बुलंद मर्तबा रखती हैं, ऊंचा मकाम है उनका, उनकी कुर्बानियां ऐसी हैं जैसे पहाड़ी पर एक बाग लगाया गया हो। और दूसरे आम मैदान की अगर मिसाल होती तो तेज बारिश तो आम मैदान की फसलों को नुकसान पहुंचा दिया करती है, अच्छी से अच्छी फसलें भी ज्यादा बारिश के नतीजे में तबाह हो जाया करती हैं। लेकिन जो फसल पहाड़ पर वाकया हो, पहाड़ पानी को बहाकर जायद पानी को नीचे फेंक देता है और बहते पानी से कभी फसल को नुकसान नहीं होता। चुनाचे जिन पहाड़ों पे चाय की काश्त की जाती है वो इसी वजह से पहाड़ों पर काश्त की जाती है कि चाय को बहता हुआ पानी चाहिए। जरा पानी खड़ा हुआ और चाय की फसल तबाह हो गई, लेकिन बहता पानी खा कितनी ही बारिश हो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो कुरान करीम ने एक लफ्ज़ रब्बर रखकर इस मज़मून को कैसी वुसअत दे दी और कैसी शान अता कर दी, यानी मोमिन की कुर्बानी का बुलंद मरतबा बयान फरमा दिया और फिर सबात के साथ इस मज़मून को जोड़ दिया, क्योंकि सबात कदम में ठोकर नहीं होती, कोई इब्तला किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो जिस पानी का जिक्र फरमाया ये इब्तलाई हालत का पानी है, यानी दरमियानी बारिश का जिक्र ही नहीं फरमाया, एक इंतहा है मूसलाधार बारिश की, दूसरी इंतहा है खुश्क साली की जहां सिर्फ शबनम गिरती है। सबात कदम इसको कहते हैं कि जब खुदा ताला के फजल से मसलन दौलत की रेल पेल हो और खुदा ने रिज्क की मूसलाधार बारिश बरसाई हो, तब भी मोमिन का नेकियों पर कदम मजबूत रहता है और कोई इब्तला उसके दीन को, उसके ईमान को, उसके अखलास को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जब गुर्बत की हालत हो तो गुर्बत का रिज्क शबनम की तरह है, लेकिन उसके बावजूद मोमिन के ईमान और इखलास को वो शबनम भी तकवीयत दे जाती है। ना गुर्बत का इब्तला उसको नुकसान पहुंचाता है, ना कसरत अम्वाल का इब्तला उसको नुकसान पहुंचाता है, और दोनों हालतों में वो खेती कौन सी है जो उगती है, वो खुदा की खातिर खर्च करने की खेती है। चुनाचे दूसरी जगह कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है मोमिन वो हैं जो खुशहाली में भी खर्च करते हैं और तंगी में भी खर्च करते हैं। तो दरअसल इस खूबसूरत मिसाल में जो आपके सामने कुरान करीम के अल्फाज में मैंने रखी है, तंगी और तुर्शी का खर्च और दौलत की फरावानी का खर्च सब शामिल हो गए हैं। यह उनको सबात है मोमिन को कि हर हालत में वो खुदा ही का रहता है और खुदा ही की खातिर उसकी कुर्बानियां होती हैं। एक और माने अम्वाल और सबात के ताल्लुक में यह है कि वो लोग जो खुदा की खातिर खर्च करते हैं उनको आम दुनिया के दूसरे इब्तलाओं में भी ठोकर नहीं पड़ मिलती, और वो लोग जो खुदा की खातिर खर्च नहीं करते बज़ाहिर कितने ही इखलास के दावे करते हों उनको जब भी मुश्किल वक्त पेश आए वो उनके कदम डगमगा जाया करते हैं और वो फिसल जाते हैं। तो अगर किसी मोमिन ने अपने ईमान की हिफाजत करनी है और अल्लाह ताला से ये इल्तजा करता है कि वो हर हाल में उसे साबित कदम रखे, तो उसका नुस्खा खुदा ताला ने बयान फरमा दिया है कि तुम खुदा की खातिर खर्च करो तो तुम्हें सबात कदम नसीब होगा। पहले मकसद और दूसरे मकसद में एक गहरा ताल्लुक है, दो ही नेक मकासद बयान फरमाए गए, बंदों की रजा का कहीं जिक्र नहीं है। अपने नफ्स की नरमी और दिल की कल्बी जज्बात के नतीजे में खर्च का कोई जिक्र नहीं, हालांकि वो कोई बुरा मुहर्रिक नहीं है, बातिल मुहर्रिकात में उसको खुदा ताला ने जिक्र नहीं फरमाया। मेरा मतलब यह है कि बाज़ दफ़ा खुदा की रजा की खातिर इंसान खर्च करता है, बाज़ दफ़ा एक गरीब की हमदर्दी में अपने नफ्स से मजबूर होकर खर्च कर देता है, वो खर्च भी अच्छा है, लेकिन चूंकि उसके नतीजे में जजा नहीं है सवाए उस जजा के जो इंसान के दिल को तस्कीन की सूरत में मिलती है, इसलिए उसका जिक्र यहां नहीं फरमाया। लेकिन बातिल मकासद में भी उसका जिक्र नहीं फरमाया। तो सवाल यह है कि ये दो क्यों चुने गए? असल वो खर्च खुदा की राह में जो जजा का मुस्तहिक होता है वो इन्हीं दो मकासद वाला खर्च है, इसके सिवा कोई खर्च ऐसा नहीं है जिसको जजा के लायक करार दिया गया हो। खर्च करना है तो अल्लाह की रजा चाहो, बंदों की रजा ना चाहो, अपने दिल की रजा ना चाहो, अपने अकरबा की रजा ना चाहो, कोई और रजा मकसूद ना हो, मर्दात अल्लाह मकसूद हो, बार बार खुदा की रजा नसीब हो। खर्च करते वक्त मुख्तलिफ कैफियत के साथ इंसान खर्च करता है, उन कैफियात में खुदा की मुख्तलिफ रजा हासिल होती है। बज़ाहिर एक ही खर्च है, लेकिन हकीकत में खर्च के साथ जो नीयतें शामिल हो रही होती हैं, जो जज्बात शामिल हो जाते हैं, वो खर्च की नौयत बदलते रहते हैं। आप भी अपने चंदों पर गौर करके देखें, कभी कोई चंदा खुदा की खास रजा की खातिर किसी खास अदा के साथ पेश किया जाता है, कभी कोई चंदा खुदा की किसी और रजा की खातिर किसी और अदा के साथ पेश किया जाता है, कभी इस तरह पेश किया जाता है कि बच्चे भूखे हैं, जरूरतमंद हैं, उन कपड़ों के मोहताज हैं, और इंसान जानते बूझते हुए कि मेरे बच्चों को सख्त जरूरत दरपेश है, कुछ ना कुछ खुदा के लिए निकालता है। वो एक रजा का और अंदाज है। एक अमीर आदमी है जिसके पास दौलत की रेल पेल है, वो सरमायाकारी कर सकता है और बड़े अच्छे मौके हैं, लेकिन अपने सरमायाकारी की ख्वाहिश को पूरा करने की बजाय वो उसमें से एक टुकड़ा निकाल के खुदा के हजूर पेश कर देता है। एक और शख्स है जिसके पास जितना रुपया है किसी ऐसे मकसद के लिए रखा हुआ है कि आइंदा किसी जरूरत के वक्त पेश आए, और आवाज आती है कि खुदा की राह में खर्च करो। उस वक्त जो उसके दिल की कैफियत है वो खुदा की खास किस्म की रजा की तालिब हो जाती है। तो ये तीन बड़ी बड़ी मिसालें हैं, लेकिन इसकी बहुत सी तफसील के साथ किस्में बयान की जा सकती हैं। और हकीकत यह है कि हर खर्च करने वाला अगर खुदा के ताल्लुक में खर्च करता है तो उसकी दिल की एक खास कैफियत हुआ करती है, वो कैफियत उस कुर्बानी को एक खास रंग अता कर देती है। और वो जो मजमून है वो इन अल्फाज में बयान फरमाया गया कि युनफिकूना अमवालहुम इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की मर्जियां हासिल करने के लिए खर्च करते रहते हैं। मुख्तलिफ मकासिद खर्च के महल मुख्तलिफ होते हैं, मवाक़े मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन मकसूद एक ही रहता है। दूसरा है वह तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, अपने नफ्स को संभालने और मजबूत करने के लिए, जिसका मतलब यह है कि वो लोग जो खुदा की खातिर चंदे देते हैं उनके पेश नजर यह बात भी होती है कि हमारी माली कुर्बानियों के नतीजे में हमें सबात कदम नसीब हो, हम खुदा के मुस्तकिल हुए रहें, गैर हमें खुदा से छीन कर न ले जा सके। और ये दोनों मकासिद हैं जो बड़ी शान के साथ पूरे होते हैं। जब आप रब्बा वाली मिसाल में पहुंचते हैं तो वहां आपको अल्लाह की रजा का मजमून भी दिखाई देने लगता है और सवात कदम का मजमून भी दिखाई देने लगता है। वो जो खेतियां निकलती हैं वो कुर्बानी की खेतियां भी हैं और जजा की खेतियां भी हैं। और कुरान करीम ने इसी ताल्लुक में उसकी एक और मिसाल दी है कि खुदा की खातिर जो एक दाना जमीन में बोता है, मिसाल तो दाना बोने की दी है मगर मुराद उसकी यही है कि खुदा की खातिर जो एक आना मसलन खर्च करता है, खुदा की खातिर एक दाना जमीन में बोता है, वो बाज़ दफा 7 बालियां निकालता है और हर बाली पे 100-100 दाने होते हैं, तो 700 दाने बन जाते हैं एक दाने के। और अगर उन 700 दानों की जजा इस दुनिया में नसीब हो जाए तो आप अंदाजा करें कि खुदा की खातिर कुर्बानी करने वालों के अम्बाल में कितनी बरकत पड़ सकती है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि यही इसी पर इक्तफा नहीं है, जिसको चाहे इसके अलावा भी बहुत देता है, और फिर दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। इस मजमून पर गौर करते हुए जब मैंने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जमाने की माली कुर्बानी पर नजर की तो मजमूई तौर पर जमात का वो चंदा जो हमें अंदाजा लगाना पड़ता है हालात से नजर आता है, आज उससे 700 गुना से भी बहुत ज्यादा हो चुका है। यानी 100 साल में ये खेती 700 की हद को पार करके खुदा की लामुतनाही अता की हद में दाखिल हो चुकी है और कोई निस्बत नहीं रही। और वो लोग जो कुर्बानियां पेश किया करते थे उनकी औलादें भी अगर आप उनको हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर आज तक ट्रेस करते हुए, उनकी निशानदेही करते हुए, खोज लगाते हुए, तलाश करें तो सारी दुनिया में फैली हुई ऐसे ऐसे बुजुर्गों की औलादें हैं जिनका बमुश्किल गुजारा हुआ करता था, मगर खुदा की राह में बड़ी कुर्बानी करने वाले थे। आज उनमें, उनकी औलादों में मैं नजर डालकर बताता हूं बाद लोगों पर, ऐसे हैं जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के जमाने में जितनी माली कुर्बानी का होती थी उनमें से एक उससे ज्यादा आज कर रहा है। यानी तमाम माली कुर्बानी जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के जमाने में सारी जमात को पेश करने की तौफीक मिलती थी, आज उन बुजुर्गों की औलादों में से बाद ऐसे साहिब दौलत और साहिब सरवत और साहिब गना लोग हैं जिनका दिल गनी है कि अल्लाह के फजल के साथ वो उस जमाने की सारी माली कुर्बानी के बगैर उससे बल्कि उससे बढ़कर अकेले पेश कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ भी पेश कर दें तब भी उस मर्तबे को हासिल नहीं कर सकते जो उस जमाने में कुर्बानी करने वाले का मर्तबा था। उस पर अल्लाह की रजा की जो नजरें पड़ती थी, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की रजा की जो नजरें पड़ती थी, उनकी कैफियत बयान करना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि वो गुरबा जिन्होंने दो पैसे भी उस जमाने में पेश किए, वो ऐसे थे जिन्होंने आइंदा जमानों में अपनी औलाद के मुकद्दर जगा दिए। उनकी औलाद में 2 करोड़ खर्च करने वाले भी पैदा होंगे तब भी उन 2 पैसों के मर्तबे को नहीं पा सकेंगे। तो ये वो सिलसिला है खुदा की कबूलियत का। वो दाना जिसको फल लगा था उसका अपना एक मकाम है, उस पर आप नजर रखा करें। जिस दाने ने 700 दाने पैदा किए और 700 को फिर खुदा ने बढ़ाकर बेशुमार कर दिया, वो असल दाना उन सब नेमतों का बाप है, उन सब नेमतों की मां है, सब कुछ वही है। वो कसरत के साथ पैदा होने वाले दाने अपने उस दाने का तो मुकाबला नहीं कर सकते जिसका फैज पाकर वो बढ़े और फूले और फले। इसलिए माली कुर्बानी करने वाले जो आज इन अदाद व शुमार को सुनेंगे, जब दिल उनका हम से भरेगा, तो उन बुजुर्गों को दुआओं में याद रखें जिनकी कुर्बानियों ने ये फल लगाए, उनकी अम्बाल में भी बरकत पड़ी और उनकी कुर्बानियों में भी बरकत पड़ी, और बहसियत मजबूई जमात अहमदिया के अम्बाल में ऐसी बरकत पड़ी है कि आदमी हैरान और शशदर रह जाता है कि 100 साल के अरसे में इतनी अजीम कुर्बानी करने वाली जमात कैसे पैदा हो गई। अब इस तमहीद के बाद मैं आपके सामने अदाद शुमार की सूरत में अतल मकदूर इख्तिसार के साथ जमात अहमदिया की गुज़श्ता साल की माली कुर्बानी का नक्शा रखता हूं। लाजमी चंदा जात जिनमें चंदा आम और चंदा वसीयत और जलसा सालाना शामिल हैं, इनमें गुज़श्ता साल खुदा ताला के फजल से जमात ने 51,90,888 पाउंड पेश किए हैं जो 24,61,92,380 की रकम बनती है। और हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में चंद हजार की बातें हुआ करती थी और सारा साल में भी हजारों से अदाद शुमार नहीं बढ़ा करते थे। लेकिन अब खुदा के फजल से लाजमी चंद आजाद की तादाद ही 24,61,92,000 हो चुकी है। दीगर बड़ी तहरीकात जो जारी हैं, तहरीक जदीद, वक्फ जदीद वगैरह, उनमें इसके अलावा 19,60,000 पाउंड की माली कुर्बानी एक साल में जमात को पेश करने की तौफीक मिल रही है, जिसकी रकम 9,28,88,851 रुपये पाकिस्तानी बनती है। इसके अलावा मुतफर्रक तहरीकात हैं जो मैंने मुख्तलिफ वक्तों में की हैं, और कुछ सदकात और ज़कात वगैरह की रकमें हैं, कुछ ईद और फितराना, ईद फंड फितराना वगैरह की रकमें हैं। इन सबको मिला लें तो ये उनके अलावा 1,35,742 पाउंड बनते हैं, जिनकी रकम 64,30,098 है। आज से 10-15-20 साल पहले आप जाएं तो 25 लाख के करीब जमात का सालाना बजट हुआ करता था। 15-20 नहीं, अगर आप मैं आपको बताऊं 53 में जो फसाद हुए हैं तो उससे आप करीबन 40 साल गुजर चुके हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से आगे आकर जमाने के लिहाज से 53 में पहुंचे हैं। तो उस वक्त जमात की माली कुर्बानी को देखकर अब्दुर्रहीम अशरफ ने, जो एक मुआनिद मौलवी थे, अपने अखबार में जिसको फैसलाबाद से शाया किया करते थे, बहुत दर्द के साथ ये इतराफ किया कि जिस जमात को मिटाने के लिए हमने तहरीकात चलाई और एड़ी चोटी का जोर लगाया, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, और माली कुर्बानी के लिहाज से आप लोग हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि ये 25 लाख रुपए सालाना कुर्बानी पेश कर रहे हैं। कहां वो वक्त 53 का जबकि 25 लाख से दुश्मन शशदर और हैरान रह गया था और वो समझा कि हम शिकस्त खा गए हैं, और आज वो वक्त आ गया है कि खुदा के फजल से जमात अहमदिया की माली कुर्बानी अगर इन सब चंदों को मिला लिया जाए मैं बताता हूं 44 करोड़ के करीब मैंने जो हिसाब लगाया था ये एक साल की माली कुर्बानी बनती है। मुझे याद है जब खुदा ताला ने मुझ पर ये जिम्मेदारी डाली उसके बाद किसी खुतबे में मैंने ये इजहार किया था जमात के सामने कि मैंने जहां तक जमात की तारीख का मुतालिया किया है हर इब्तला के बाद अदाद व शुमार की कैफियत बदल गई। मुझे याद है जब खुदा ताला ने मुझ पर ये जिम्मेदारी डाली उसके बाद किसी खुतबे में मैंने ये इजहार किया था जमात के सामने कि मैंने जहां तक जमात की तारीख का मुतालिया किया है हर इब्तला के बाद अदाद व शुमार की कैफियत बदल गई है। अगर हजारों में चंदे होते थे तो कोई तहरीक जमात के खिलाफ चलाई गई तो उसके बाद अगली तहरीक से पहले लाखों में पहुंच गए, और लाखों में जो चंदे होते थे जब एक और तहरीक चलाई गई तो वो करोड़ों में पहुंच गए। तो मैंने दुआ ये की थी और जमात को कहा था इस दुआ में मेरे साथ शरीक हों कि खुदा करे हमारे देखते देखते अब ये करोड़ अरबों में बदल जाएं। तो जब मैंने ये तहरीक की थी उस वक्त चंद करोड़ भी नहीं थे चंदे, मैंने आज़ाद शुमार निकाल के इंशाल्लाह जलसे पर पेश करूंगा, लेकिन आज खुदा के फजल से निसफ अरब तक करीबन मामला पहुंच चुका है। और ये जो आज़ाद शुमार है ये सारी दुनिया की जमातों के नहीं है, दुनिया की जमातों में से 44 बड़ी जमातों के हैं और बाकी दुनिया में जमातें फैल रही हैं, कसरत के साथ शामिल हो रही हैं। बहुत सी ऐसी जमातें हैं जहां अभी चंदे का निज़ाम मुस्तहकम नहीं हुआ, बाज तादाद में थोड़ी हैं, बाज गुर्बत की वजह से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, यानी कुर्बानियों में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन 126 ममालिक में से बाकी ममालिक ने बहरहाल आपके साथ शामिल होना है। वो तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं, निज़ाम चंदे का निज़ाम रफ्ता रफ्ता उनमें दाखिल हो रहा है। मसलन रूस की रियासतें हैं जो USSR इसको कहना चाहिए, उसमें भी अब खुदा के फजल से जहां अहमदी जमातें कायम हुई हैं उन्होंने कुछ ना कुछ चंदा देना शुरू कर दिया है। तो ये लोग सब आखिर आपके साथ शामिल होंगे। हमें दुआ करनी चाहिए कि पहले अव्वल ये कि जैसा कि मैंने ये तमन्ना का इजहार किया था, खुदा जल्द अब हमारे जमात को करोड़ों की बजाय अरबों के बजट अता करें, और दूसरे माली कुर्बानी जितनी बढ़े उसकी शान वही रहे जो कुरान करीम ने बयान फरमाई है कि रब्बा पर हो, खुदा के नजदीक बुलंद मर्तबा कुर्बानियां हों, ऐसी कुर्बानियां हों जिनको कोई इब्तला नुकसान न पहुंचा सके, ना मूसलाधार बारिश नुकसान पहुंचा सके, ना खुश्कसाली नुकसान पहुंचा सके, हर हालत में वो तरोताजा रहें और नए नए फल निकाल देती रहें, और फिर खुदा का सलूक उनसे वही हो जो पिछलों की कुर्बानियों से हुआ था, जिन बुजुर्गों की कुर्बानियों ने वो मंजिल बनाई है जिस पे हम आज खड़े हैं। खुदा करे कि हमारी कुर्बानियां वो उसी निस्बत से एक और ऊंची मंजिल खुदा की राह में बना दें, और आइंदा नस्लें हमारा जिक्र उस तरह मोहब्बत और प्यार और दुआओं के साथ किया करें جس طرح ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں اور غلاموں کا ذکر محبت اور پیار اور دعاؤں کے ساتھ کرتے ہیں. جہاں تک جماعتی موازنے کا تعلق ہے, پاکستان کے علاوہ جو بعض بڑے بڑے ممالک ہیں ان میں سے میں نے 15 ممالک آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے رکھے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خدا کے فضل سے کس تیزی کے ساتھ بیرونی جماعتیں قربانی میں ترقی کر رہی ہیں. جرمنی صفحے اول پر ہے, بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے اور واقعتاً ربوا کا مقام حاصل کر لیا ہے. جرمنی کا ایک سال کی قربانی 10,52,789 پاؤنڈز کی ہے اور یہ سلسلہ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے, جس کا مطلب ہے 4,98,70,000 روپے کی قربانی صرف جماعت جرمنی کی ہے, جو چند سال پہلے ساری دنیا کی جماعتوں کے مل کر بھی نہیں تھی. 10-15 سال پہلے چلے جائیں آپ تو آپ حیران ہوں گے کہ کس قدر خدا نے جماعت کے اموال میں اور قربانی کی روح میں برکت دی ہے. امریکہ دوسرے نمبر پر جرمنی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور خدا کے فضل سے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. وہاں مالی نظام مستحکم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ابھی وہاں بہت گنجائش ہے, اس لیے اگرچہ جرمنی سے ابھی کافی پیچھے ہے لیکن جرمنی کے لیے چیلنج ضرور ہے, کیونکہ جس رفتار سے وہ لوگ بیدار ہو رہے ہیں, احساس قربانی پیدا ہو رہا ہے اور نشو و نما پا رہا ہے, بعید نہیں کہ چند سالوں تک وہ جرمنی کو پکڑ لیں, تو خیر مشکل ہے مگر پکڑنے کی کوشش ضرور کریں گے, قریب ضرور پہنچ سکتے ہیں. وہ نمبر 2 5,01,930 پاؤنڈ امریکہ کی قربانی ہے. ایک وقت تھا یعنی 15-20 سال پہلے کا مجھے یاد ہے, شاید اس سے بھی کم کا وقت ہو, کہ امریکہ کو باہر سے امداد ملا کرتی تھی. میں جب 1978 میں گیا ہوں اس وقت بھی یہی صورت تھی اور میں نے ان کو یاد دلایا کہ دیکھو تم ابھی تک باہر سے مدد لے رہے ہو, یعنی جماعت جہاں تک مساجد اور مشنز کے قیام کا تعلق تھا وہ محتاج تھے کہ باہر سے مدد آئے تو بنا سکیں. ان کو میں نے یاد دلایا کہ ایک زمانہ تھا جب کہ قادیان سے نہایت غریب لوگ 2-2 پیسے کی قربانیاں پیش کر کے, کوئی انڈا دے کر, کوئی مرغی دے کر, کوئی بکری دے کر روپے جمع کیا کرتی تھی اور وہ جماعت جو بھی قربانی کرتی تھی تمہارے جیسے امیر ملکوں کی طرف روانہ ہوا کرتی تھی. تمہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اب باہر کے غریب ملکوں کے لیے قربانیاں پیش کرنی چاہیے. وہ جو احسان ہے وہ حروف میں نہیں یا اعداد و شمار میں نہیں گنا جایا کرتا, اس زمانے کی جو قربانی ہے وہ چاہے 5,000 یا 10,000 روپے کی ہو لیکن جس روح کے ساتھ وہ قربانیاں پیش کی گئی ہیں وہ ایسی روح ہے جو ہمیشہ غالب رہنے والی روح ہے اور اس قربانی کا بدلہ کبھی نہیں اتارا جا سکتا. ہاں بدلہ اتارنے کی ایک تمنا دل میں ہمیشہ بے قرار رہنی چاہیے, یہی اس کا بدلہ ہے. تو وہ جماعتیں جن میں سے بعض اس بات کے شاکی تھے کہ فلاں جگہ جماعت نے خرچ کر دیا, فلاں جگہ خرچ کر دیا, امریکہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, ان کو میں نے اس طرح سمجھایا تھا. تو آج خدا کے فضل سے امریکہ کی یہ حالت ہے کہ وہ واقعتاً باہر کی غریب جماعتوں کی مدد کر رہا ہے اور افریقہ بھی, جنوبی امریکہ میں بھی, دوسری جگہ بھی, یورپ کے بعض ممالک میں بھی ہم امریکہ کی زائد آمدن سے خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعتوں کی مدد کرتے ہیں. برطانیہ تیسرے نمبر پر ہے لیکن امریکہ کے قریب ہے, 4,88,575 پاؤنڈز کی ایک سال کی قربانی ہے اور اگر یہ بھی زور لگائیں تو امید ہے امریکہ کے قریب قریب یا کبھی ایک آگے ہو جائے کبھی دوسرا آگے ہو جائے ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی. انڈونیشیا خدا کے فضل سے کافی اوپر آیا ہے پچھلے چند سالوں میں, پہلے اس کا بہت ہی نیچے مقام تھا نمبر شمار کے لحاظ سے, اب چوتھے نمبر پر آ گیا ہے. ان کے سال کی مالی قربانی 3,10,497 پاؤنڈ بنتی ہے. کینیڈا پانچویں نمبر پر ہے, 2,85,563 پاؤنڈ. और घाना छठे नंबर पर है 71,832 पाउंड की कुर्बानी है। घाना का जिक्र खासतौर पर दुआ की तहरीक के साथ करना चाहता हूं। ये एक बहुत गरीब मुल्क है, एक जमाने में इसे गोल्ड कोस्ट कहा जाता था क्योंकि यहां सोना बहुत था और मगरबी मुल्कों ने खूब दौलत यहां से लूटी है, लेकिन बहुत से ऐसे हालात पैदा हुए जिनकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है कि घाना दिन ब दिन गरीब होता चला गया। कुछ चंद साल पहले तक तो ये हाल था कि आम फाका कशी का आलम था, और एक दफा एक मुबल्लिग ने मुझे लिखा कि गुर्बत और फाका कशी का ये हाल है कि मेरा एक दफा दरवाजा खटका, मैंने बाहर निकल कर देखा कि कौन है, तो वो शख्स भूखा था, रोटी मांगने के लिए आया था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा था। यानी नकाहत गालिब आ गई और उसको थोड़ा थोड़ा कुछ पिलाकर आहिस्ता आहिस्ता उसमें जान डाली गई, फिर वो कुछ खाने के काबिल हुआ। और इस गुर्बत के बावजूद जो अभी तक जारी है, वैसी कैफियत तो नहीं, लेकिन फर्क पड़ चुका है अल्लाह के फजल से, लेकिन बिलअमूम घाना की जमातें गरीब हैं लेकिन कुर्बानी की रूह से बहुत ही अजीम जमातें हैं। वहां गरीब गरीब लोगों में भी मैंने बेहद कुर्बानी का जज्बा देखा है, बड़े खुले दिल के लोग हैं, बड़े हौसले के लोग हैं और जमात से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। बहुत दूर दूर के गांव में भी मैंने जाकर देखा है वहां दौरे के दौरान कि वहां लोगों के मुतल्लिक आदमी सोच भी नहीं सकता था कि इतना गहरा इखलास होगा, इश्क है हजरत वसीम अलैहिस्सलाम और आपके पैगाम से। ये जमात अगर माली कुर्बानी की तरह तबलीग में भी उठ खड़ी हो, जैसा कि अब शुरू हो गई है, तो इंशाल्लाह चंद सालों में घाना में इनकलाब बर्पा हो सकता है। तो इस पहलू से इस जमात को खुसूसियत से याद रखें और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला बाकी अफ्रीकन मुल्कों को भी माली कुर्बानी और वसी हौसलगी में घाना की तकलीद की तौफीक अता फरमाए। मॉरिशस भी बड़ी मुस्तैद जमातों में से है अल्लाह के फजल के साथ, इसने भी अपना नंबर ऊंचा किया है और सातवें नंबर पर मॉरिश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, सातवें नंबर पर मॉरिशस की 1,00,000 कुर्बानी है 71,639 पाउंड की। फिर हिंदुस्तान की बारी है, ये भी काफी पीछे रह गया था, अब ऊपर आना शुरू हुआ है और अब जमातों में काफी बेदारी पाई जाती है, और मैं उम्मीद रखता हूं जिस तरह हमने मुहिम शुरू की है इंशाल्लाह ताला हिंदुस्तान की जमातें बड़ी तेजी के साथ अब नश्वनुमा पाएंगी, और अल्लाह के फजल से जैसा कि मैं उनको बार बार याद दहानी करवा रहा हूं अपना पुराना खोया हुआ मुकाम हासिल करेंगी। वो अजमत का मरतबा जब हिंदुस्तान सारी दुनिया को अपने चंदों से खिदमत दीन के लिए रकम मुहैया किया करता था, तो अब भी मैं उम्मीद रखता हूं कि जमातें अगर बेदार हो जाएं और अजम के साथ काम शुरू करें तो वो दिन दोबारा लौट सकते हैं। कादियां की एक हमारे दिल में मोहब्बत है, जहां हज़रत मसीह अलैहि सलाम पैदा हुए, जहां से पैगाम फैला, वो मोहब्बत हमें मजबूर करती है कि हिंदुस्तान को फिर सफ़े अव्वल में देखें और वहां से सारी दुनिया में फिर अल्लाह ताला की हदायत का नूर पहुंचे। नॉर्वे भी बड़ी मुस्तैद जमात है, आगे बढ़ रही है, हिंदुस्तान के बाद नॉर्वे की बारी है, फिर जापान, बावजूद इसके कि बहुत कम तादाद है, आठवें नंबर पर या नवें नंबर पर आ गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नवें नंबर पर, और ना दसवें नंबर पर जापान आ गया है। नॉर्वे नवें नंबर पे है, जापान दसवें नंबर पर, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर बांग्लादेश है, फिर हॉलैंड है। हॉलैंड की जमात भी यूरोप की दीगर जमातों के मुकाबले पर तादाद के लिहाज से खुदा के फजल से बहुत मुखलिस और माली कुर्बानी में पेश है। फिर स्वीडन आता है, उसके बाद नाइजीरिया। नाइजीरिया का 15वां नंबर है। नाइजीरिया में खुदा तआला के फजल से इक्तिसादी लिहाज से अल्लाह ने बहुत बरकतें अता की हैं, बहुत अमीर मुल्क है पोटेंशियल के लिहाज से। इनफरादी तौर पर मुकाबला करके देखें, मैन टू मैन जिसको मुकाबला कहते हैं, तो घाना के मुकाबले पर नाइजीरियन अहमदी की हालत बहुत बेहतर है, इसलिए वहां की जमात को कोशिश करनी चाहिए कि इखलास में भी वो आगे बढ़ें और जिस तरह खुदा ने उन पर फजल फरमाया है उसी नस्बत से माली कुर्बानियों में आगे बढ़ें। तादाद के लिहाज से वो पीछे हैं लेकिन इतना पीछे नहीं कि माली कुर्बानी से में गाना से इतना पीछे रह जाएं। बहरहाल उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला इन 15 की तरह बाकी सब जमातों पर भी बेशुमार फजल नाज़िल फरमाएगा जो माली कुर्बानी में मुसलसल मेहनत और इस्तिखलास और इस्तिक़लाल के साथ पूरी वफा के साथ सालाना अहयाए कलिमतुल्लाह के लिए खुदा की हजूर पेश करती चली जा रही हैं और दिन ब दिन इनका मेयार बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि मैंने बयान किया है अमेरिका के मामले में कि बहुत से अभी ऐसे अहबाब हैं जो अगर हसब तौफीक खर्च करें तो अमेरिका में अभी बहुत आगे आने की गुंजाइश है। ये सूरत हाल कमोबेश दुनिया के हर मुल्क पर पूरी उतरती है क्योंकि कभी भी किसी मुल्क में एक जैसे ईमान की हालत के लोग नहीं हुआ करते। अगर चंदे बढ़ाने हैं तो सबसे अहम चीज यह है कि इखलास का मेयार बढ़ाने की कोशिश करें। जितना इखलास का पानी ऊंचा होगा उतना चंदा खुद ब खुद उछल उछल कर बाहर आएगा और अगर इखलास का मेयार बढ़ाने की कोशिश ना की जाए और चंदों के मुतालबे पर जोर दिया जाए तो उसके नतीजे में बाज़ दफा आगे बढ़ने की बजाय लोग पीछे हटने लग जाते हैं। मेरा तजुर्बा है कि वो कमजोर लोग जो चंदों में पीछे हों उनके पीछे जब सेक्रेटरी माल वगैरह पढ़ते हैं तो वो दूर भागने लग जाते हैं। बाज़ लोग अपने एड्रेस बदल लेते हैं कि कहीं हमारे तक सेक्रेटरी माल ना पहुंच जाए। तो इखलास ना हो तो फिर तहरीक और ज्यादा धकेल देती है बजाय इधर लाने के, लेकिन इखलास का मेयार ऊंचा हो तो फिर तहरीक हो, फिर देखें वो किस जोश के साथ आगे बढ़ता है। दोनों बातें जरूरी हैं। चंदा तलब करने वाला निजाम जो है वो भी बहुत मुस्तकम होना चाहिए और बर वक्त उस निजाम को निजाम के का वास्ता सारी जमात से कायम रहना चाहिए और बर वक्त का लफ्ज बहुत अहम है। बार दफा चंदा वसूल करने वाले जमात के मुख्तलिफ अफराद तक पहुंचते तो हैं लेकिन बर वक्त नहीं पहुंचते। मसलन एक साल गुजर गया है, 11 महीने यानी गुजरने को है, 11 महीने हो गए हैं और सेक्रेटरी माल अचानक जाग उठता है और कहता है कि ओहो हो अभी तो मेरी काफी रकम वसूल होने वाली है, वो फिर दरवाजे खटखटाता है तो पहुंच तो जाता है लेकिन बर वक्त नहीं पहुंचता। अगर पहले महीने में पहुंचे तो बिलअमूम हमारा यह तजुर्बा है कि फिर जितना चंदा किसी शख्स ने देना होता है महीने के साल के आखिर तक उससे ज्यादा देता है, पीछे नहीं रहा करता। तो निजाम जमात में जो चंदा वसूल करने का निजाम है उसको मुस्तहकम करना बहुत ही अहम काम है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो निजाम जिसका इखलास का मेयार बढ़ाने से ताल्लुक है वो साथ साथ मुस्तैद होकर कदम कदम चले बल्कि आगे बढ़कर चले। और अगर इखलास का मेयार बढ़ाने वाला निजाम यानी तालीम और तरबियत का निजाम और नमाजों पर कायम करने यानी तरबियत का हिस्सा ही है नमाजों पर कायम करने का निजाम, खुदा से ताल्लुक बढ़ाने का निजाम, ये निजाम अगर पूरी तरह मुस्तैदी के साथ अमल पैरा हो तो फिर चंदा वसूल करने वाले निजाम में कमजोरियां भी रह जाएं तो इतना नुकसान नहीं हुआ करता। इखलास बढ़ जाए तो जैसे बच्चे के लिए मां का दूध बार दफा उछलता है छातियों से बाहर आ जाता है हालांकि बच्चे ने तलब भी नहीं की होती, बिल्कुल यही कैफियत इखलास की है। अगर खुदा से मोहब्बत बढ़ जाए इंसान को इंसान नमाजों पर कायम हो जाए जैसा कि कुरान करीम ने बयान फरमाया है और अल्लाह ताला से प्यार का ताल्लुक कायम हो जाए तो फिर बगैर तहरीक के भी इंसान वज़ खुद अदा करता है। तो ये दोनों चीजें हैं जिनको निजाम जमात के माली निजाम को मुस्तहकम करने के लिए हमें हमेशा पेश नजर रखना होगा। और एक तीसरी चीज जिसका इखलास से भी ताल्लुक है लेकिन उसको इखलास के दायरे में उमून शुमार नहीं किया जाता वो दयानतदारी है। दयानत इस सारे निजाम को मजबूती बख्शती है। अगर दयानत ना हो तो इखलास भी हो और माली निजाम मजबूत भी हो तब भी लोग चंदा देने से हाथ खींच लेते हैं। जो बहुत बड़ी बदनसीबी आज आलम इस्लाम की है, जिसको जिसमें खुदा ताला ने हमें मुस्तस्ना रखा हुआ है, उसमें एक ये माबेहिल इम्तियाज है कि बाकी आलम इस्लाम को वो दयानत नसीब नहीं है। और उनमें बावजूद इसके कि बहुत से लोग हैं जो कुर्बानी करने की तमन्ना रखते हैं और बेशुमार रुपया भी उनके पास है, इस वजह से नहीं देते, उनको पता है कि जो देंगे खा जाएंगे। तो जब एतमाद ही न रहे कि जिस मकसद के लिए खर्च किया जा रहा है वो उस मकसद को पहुंचेगा, तो दिल कुर्बानी के लिए खुलता नहीं है। तो जमात अहमदिया की कामयाबी का राज, जो मरकजी राज निजाम जमात के इस्तकामत का है, वो दयानत में है। इखलास के नतीजे में चंदा आएगा, माल का निजाम मजबूत होगा तो चंदे को संभाला जाएगा, लेकिन अगर दयानत का फुकदान हो जाए तो ये दोनों बातें बिल्कुल बेकार और बातिल हो जाएंगी, कोई भी इनकी हैसियत नहीं रहेगी। बस हमारे ऑडिट के निजाम को भी मुस्तैद होना चाहिए और बिलअमूम जमात का दयानत का मेयार ऊंचा करते रहना चाहिए। मेरी नजर तो इस पर पड़ती है कि कितनी शिकायतें मुझे माली लेन देन में बददियानती के मुतल्लिक पहुंचती हैं, इसको मैं बड़े गौर और फिक्र से देखता हूं और इससे अंदाजे लगाता रहता हूं कि इस वक्त जमात की क्या हालत है। जो वो लोग जो अपने जाती लेन देन में बददियानती इख्तियार कर जाएं, जब वो जमाती लेन देन में मुलव्वस होंगे तो इब्तदान वो बददियानती नहीं करेंगे, क्योंकि फर्क करते हैं कुछ लोग और ये एक तभी बात है। मसलन एक शख्स कोई बात कह रहा हो, आप कहें तुम झूठ बोलते हो, तो वो कहता है मैं आपके सामने भी झूठ बोलूंगा, ये बात भूल जाता है कि खुदा के सामने खड़ा है और उसके सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं कर रहा। लेकिन एक नफसियाती नुक्ता है, तौबा तौबा मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने भी झूठ बोलूंगा। तो इस नफसियाती रुझान के पेश नजर कई लोग बददियानत भी हों तो जमात के मामले में एहतियात करते हैं और जमात के मामले में चंदा खाने के लिए उनके हौसले नहीं पड़ते, लेकिन जब मेयार और गिर जाए तो फिर ये सब बातें भी शुरू हो जाती हैं। अब तो यह है कि लखू खा चंदा देने वालों में से शायद किसी एक को शिकायत पैदा हो कि उसका रुपया किसी ने जमात के खजाने में दाखिल कराने की बजाय खुद इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अगर जमात की दयानत का मेयार उतना ना रहा जैसा कि हम तवक्को रखते हैं तो खतरा है कि फिर ये बातें आम शुरू हो जाएंगी। और अगर खुदा ना खास्ता ये शुरू हो गया तो फिर निजाम जमात की कोई हिफाजत की जमानत नहीं दी जा सकती। तो दुआ में फिर इस बात को भी दाखिल कर लें कि अल्लाह ताला हमारे इखलास का मेयार भी बुलंद रखे, हमारे माली निजाम को भी मजबूती अता फरमाए, इस्तकामत बख्शे, उनको ताकत बख्शे, मेहनत की तौफीक बख्शे कि वो बराबर बर वक्त जमात को माली कुर्बानी की याद दहानी कराते रहें और हमें वो दयानत का बुलंद मयार अता फरमाए। ये तीनों चीजें इतने बुलंद मयार की हों कि खुदा के नजदीक हमारा बाग रब्बा पर कायम हो जाए, उस बुलंदी पर कायम हो जाए जिस पर कुरान की नजर प्यार से पड़ रही है, जिस पर कुरान के खुदा की नजर प्यार से पड़ रही है। अल्लाह ताला हम इसकी तौफीक अता फरमाए।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذوه يستجب لكم ولذكر الله